में समाये हुए अभी हमारे सम्मुख आदरणीय दीदी पहुंच चुकी है। हम सभी अपनी आंतरिक शक्तियों को प्यारे बाबा से और अधिक जोड़ने के लिए दीदी से बेहद की वैराग्य वृत्ति पर प्रकाश प्राप्त करेंगे। उससे पूर्व हम सब एक हाथ की ताली से दीदी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और अपने मस्तक मणि को जागृत करके दीदी से हम फोटोकॉपी अपने मन बुद्धि में उतारते जाएंगे। दीदी का परिचय आप सबको मिल ही चुका है। विशाल बृहत विहंग मार्ग की सेवाओं में सदा उपस्थित रहने वाली बहुत विशाल परिचय से युक्त हैं, लेकिन प्यारे बाबा की अति लाडली नूरे रत्न तपस्वी मूरत अनुभवी मूरत सारगर्भित अपने स्वरूप से हम सबको बेहद के वैराग्य की तरफ ले चलेंगी। आदरणीय दीदी उषा दीदी।
ओम शांति। बाबा ने हम बच्चों को विशेष ये बात स्पष्ट की है कई मुरलियों में कि तपस्या का फाउंडेशन, रियल तपस्या जिसको कहे तो रियल तपस्या का फाउंडेशन बेहद की वैराग्य वृत्ति है। जब तक बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं है तब तक तपस्या सही स्वरूप में नहीं हो सकती है। और बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले को ही भक्ति में भी टाइटल मिलता है राज ऋषि। राज भी है और ऋषि भी है। राज माना सर्व कर्मेंद्रिय के ऊपर हमारा अधिकार हो, राज्य हो, तो ऋषि माना वैराग्य हो। तो राज और वैराग्य दोनों साथ साथ है। राज माना भाग्य भी है तो ऋषि माना त्याग भी है। तो त्याग और भाग्य इकट्ठा जीवन के अंदर महसूस करना। राज माना जैसे राजा सभी का प्यारा भी होता है तो ऋषि माना न्यारा भी है। तो प्यारा और न्यारा का बैलेंस ये बेहद की वैराग्य वृत्ति है। तो जब जीवन के अंदर बेहद की त्याग वृत्ति हो, बेहद के सेवाधारी हो, बेहद का वैराग्य हो, तब भविष्य में भी विश्व महाराजन हो। इसलिए राज ऋषि अभी से बनना है। तो विश्व महाराजन की यही विशेषता है कि बैलेंस उसके जीवन में है। लेकिन सिंपल शब्द में तो हम सभी जानते हैं कि बेहद के वैराग्य वृत्ति माना लगाव से मुक्त, न्यारा और प्यारा। सिंपल भाषा में हम ये जानते हैं, लेकिन इस चीज को लाने के लिए विशेष पुरुषार्थ क्या है? कैसे हम अपने अंदर ये बेहद की वैराग्य वृत्ति को विकसित कर सके? तो उसके लिए जैसे बाबा ने एक मुरली में ये बात बहुत सुंदर कही थी कि देखो, भक्ति मार्ग में भी जो ऋषि होते हैं, हठ योगी होते हैं, वो हठ से तपस्या करके कोई ना कोई सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, चाहे धरती से ऊपर उठ जाते हैं या पानी के ऊपर है ना दिखाते हैं या आग के ऊपर दिखाते हैं, ये सिद्धि है। वास्तव में स्पिरिचुअली हम बच्चों का ये यादगार है कि बेहद की वैराग्य वृत्ति से कैसे ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो धरनी से ऊपर माना ये देह अभिमान की जो धरनी है उससे अपने आप को ऊपर कर लेते हैं। तो आध्यात्मिकता में यही हमारा यादगार है, जिसको फिर बाद में कहा कि भई ऐसे ऐसे भारत में ऋषि हो गए जो धरती से ऊपर उठ जाते थे। लेकिन वास्तव में ये देह अभिमान की धरनी से अपने आप को ऊपर उठा लेना, आग से ऊपर माना, जो माया के विभिन्न विकृतियां हैं, विकार है, उन विकारों की आग से भी ऊपर हो गए हम, तो ये हमारा ही यादगार है। या पानी से ऊपर माना, पानी माना बहाव। तो जब हम ब्राह्मण बच्चे दुनिया के अनेक प्रकार के बहाव जो है, जो अलग अलग तरीके से हमें आकर्षित करते हैं, उन विभिन्न आकर्षण के बहाव से अपने आप को ऊपर उठा लेना, तो ये तीनों ही हमारा यादगार है और यही बेहद की वैराग्य वृत्ति है। जो सिद्धि हम अपने जीवन के अंदर संगम युग में अनुभव करते हैं, जिसका वर्णन द्वापर के बाद शुरू होता है कि भारत में ऐसे ऋषि थे, है ना? ये बेहद की वैराग्य वृत्ति है। लेकिन उसके लिए क्या पुरुषार्थ करेंगे? ये सिद्धि स्वरूप बनने के लिए पुरुषार्थ क्या होगा? तो सबसे पहला पुरुषार्थ है स्वयं को मधुबन निवासी समझना। बाबा ने हमेशा हम बच्चों को यही कहा कि बच्चे, तुम्हारा परमानेंट एड्रेस कौन सा है? मधुबन है। तो मधुबन निवासी माना मधुबन, माना मधुसूदन के साथ, बाबा के साथ। मधुबन निवासी बनना माना त्याग, तपस्या और सेवा। मधुबन निवासी बनना माना वो मधुरता, मधुसूदन के साथ जब है तो वो मधुरता अपने आप अंदर में आ जाती है। तो ऐसे जब अपने आप को समझते हैं तो न्यारा और प्यारा बनना सहज हो जाएगा। तो हमेशा जो अपना परमानेंट एड्रेस है, उस परमानेंट एड्रेस के स्मृति स्वरूप होकर के रहना, तो मधुबन निवासी माना कई प्रकार के बाहर के आकर्षण से अपने आप को मुक्त कर देते हैं, है ना, क्योंकि मधुबन है ही इतना मधुर मधुर, गीत भी है ना, मधुबन है ही इतना मधुर मधुर। तो वो मधुरता जैसे जीवन के अंदर घुलने लगती है और हमेशा बाप दादा के साथ का अनुभव करते हुए हम जैसे एक एक पल बिताते हैं, तो ये बेहद के वैराग वृत्ति का सहज पुरुषार्थ। दूसरा पुरुषार्थ है कि बेहद की वैराग्य वृत्ति के लिए घर से बेघर हो जाओ। घर से बेघर माना ये जो घर है देह रूपी घर, उसके भान से ऊपर, है ना, उसके भान से परे, घर से बेघर। जब अपने आप को आत्म स्वरूप में स्थित कर लेते हैं, इतना देह से न्यारे हो जाते हैं, उस स्मृति से भी न्यारे, देह अभिमान से, देह की दुनिया से, देह के बातों से न्यारा जितना करते हैं, तो वैराग्य वृत्ति सहज आ जाती है, क्योंकि ये देह भान ही तो सारे आकर्षणों की जड़ है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि बाहर की दुनिया को क्या कहा, दुनिया में भी सोनी हिरण है, सोनी हिरण है जो आकर्षित करती है, और वो सोने हिरण कहाँ पहुंचाता है, शोक वाटिका में, है ना, सोने हिरण कहाँ पहुंचाता है, शोक वाटिका में पहुंचाता है। तो इस तरह से बाबा कहे कि घर से बेघर हो जाना, यानी ये देह भान से भी अपने आप को ऊपर उठा लो। तो जब उससे न्यारे हो जाएंगे, उससे उपराम हो जाएंगे, तो सहज ही वो बेहद की वैराग्य वृत्ति हमारी विकसित हो जाएंगी। जितना इस घर के उसमें फंसे रहेंगे तो बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं आ सकती। दूसरी बात के जीवन के अंदर अगर मान लो कि बाबा के द्वारा ही हमें कोई विशेषता प्राप्त है, तो उस विशेषता के भी लगाव में नहीं, लेकिन ये विशेषता भी बाबा की देन है, करम करावनहार बाबा कराता है अपना कार्य इस विशेषता के द्वारा, तो हर बार जब बाबा सामने आ गया तो बेहद की वैराग्य वृत्ति सहज हो जाती है। यानी दूसरे शब्द में कहे तो मेरेपन के बजाय बाबापन, मेरेपन के बजाय बाबापन आ जाए। करण करावनहार बाबा है, विशेषता भी उसी की देन है, तो उसका अभिमान नहीं आएगा, लेकिन बाबा जब कार्य कराता है, बाबा को ही वो विशेषता समर्पित है, तो जब समय आएगा बाबा उस विशेषता के द्वारा हमें यूज करेगा, तो करण करावनहार बाबा हो गया। उसको कहा घर से बेघर। दुनिया के अंदर जितने भी संबंध है वो संबंध स्नेह के आधार पर नहीं है, स्वार्थ के आधार पर है। तो हमारा भी इस दुनिया से संबंध स्वार्थ, स्व अर्थ, स्व के रथ को जब संपूर्ण रीति से स्वाहा कर दिया और स्व को जब ये रथ भी एक उन्नति के लिए, पुरुषार्थ के लिए हमने आधार बनाया, तब बेहद की वैराग्य वृत्ति आएगी। क्योंकि ये मालूम है कि दुनिया के संबंध तो स्वार्थ से है और हमारा स्व अर्थ स्व आत्मा की उन्नति अर्थ जो कुछ भी हम करते हैं आत्मा की उन्नति किसमें है तो उसके लिए जब किसी से भी संबंध में आते हैं तो वहां भी आत्मिक भाव आत्मिक दृष्टि आत्मिक वृत्ति ये जितनी हमारी विकसित रूप में रहेगी उतनी बेहद की वैराग्य वृत्ति सहज होगी। संबंध संपर्क में जरूर आना है लेकिन संबंध संपर्क में भी उस लगाव से नहीं कि ये मेरा है मेरे हैं, तो मेरेपन का भाव समाप्त। श्रीमत क्या कहती है तो जहां मेरापन आया मैंपन आया वहां बाबा जहां मेरापन आया वहां श्रीमत क्या कहती है तो मैं की जगह बाबा और मेरे की जगह श्रीमत। जब ये बात याद रहेगी हमें स्मृति में रहेंगी तो फिर बेहद की वैराग्य वृत्ति को डेवलप करना आसान होगा। माना जैसे बाबा ने कहा कि जैसे हलवा तैयार हो जाता है तो किनारा छोड़ देता है रहना वही है संबंध संपर्क को छोड़ना नहीं है। संबंध संपर्क के बीच में रहते हुए किनारा छोड़ना माना उस लगाव को छोड़ना। श्रीमत के आधार पर हमारा हर कदम सहजता से और ही उनके प्यारा बनाते हुए न्यारा बनते हुए हम संबंध में आएंगे न्यारा प्यारा बनते हुए हम संबंध में आएंगे। तो इसीलिए बाबा ने इतनी सुंदर ये युक्ति बताई है कि संबंध संपर्क में भी हमें किस तरह से रहना है क्योंकि ये भाव जब समाप्त हो गया मेरापन का आत्मिक भाव जितना डेवलप हो गया तो और ही अच्छी तरह से हम सेवा करेंगे। कभी कभी ये बैलेंस जब नहीं रहता है तो क्या होता है मेहनत महसूस होती है और वो मेहनत कई बार हमको थका देती है क्योंकि चाहना अंदर से हर एक की यही है कि न्यारा प्यारा हो करके संबंधों को निभाएं लेकिन वो मेहनत में जब आ जाते हैं तो कभी कभी बैलेंस गड़बड़ा जाता है ना? तो जहां प्यार से सेवा करनी है उसके बदले क्या हो जाता है न्यारा बन जाते हैं। तभी दुनिया के कई लोग भी कह देते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां क्या सिखाती है। कई बार कई जैसे बांधेलियां होती हैं तो उनके परिवार वाले जब मिलते हैं तो हमें क्या कहते हैं कि पहले प्यार से सेवा करते थे है ना जिम्मेवारी समझ करके सेवा करते और अभी सेवा कोई छोड़ देते हैं माना उनके लिए वहां की सेवा ज्यादा इम्पोर्टेंट है और घर की सेवा छोड़ देते हैं तो माना बैलेंस गड़बड़ा गया ना। और इसीलिए जब बैलेंस गड़बड़ा जाता है तो हमें मेहनत करनी पड़ती है या उस समय हम किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचा देते हैं और फिर उनके जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं वो वाइब्रेशंस हमारा योग लगने देगा हमारा योग लगने नहीं देता है। तो जब हमारा योग नहीं लगता है व्यर्थ क्योंकि उनके व्यर्थ के वाइब्रेशन हमारी बुद्धि को स्पर्श करता है तो हमारे अंदर भी व्यर्थ उत्पन्न होता है वाइब्रेशंस तो टच होते ही है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं संबंध में रहते हुए न्यारे होकर के निभाना जरूर है। किनारे का मतलब छोड़ करके नहीं आना है, उनके बीच में रहते हुए निभाते हुए नष्टु मोहा बन करके निभाओ तो और अच्छे से निभा सकेंगे। लगाव से निभाएंगे तो वहां पर भी तकलीफ होगी, दुख दर्द महसूस होगा, लेकिन नष्ट मोहा होकर के जब निभाते हैं तो जिम्मेवारी से सेवा भी करते हैं, बाबा की याद में रह करके आत्मिक भाव रखते हुए जब सेवा करते हैं कि बाबा ने हमें ये परिवार दिया है सेवा के लिए, इनकी सेवा भी हमें करनी है, तो ये भाव से जब हम सेवा करते आत्मिक भाव रखते हुए तो वो आत्मिक भाव उनके दिलों को भी स्पर्श होगा, उनकी सेवा यथार्थ रूप में हो जाएगी और धीरे धीरे हमारे बंधन भी छूटते जाएंगे। तो एकदम किनारा होकर के नहीं, युक्ति बाबा ने बताई है हमें कि कैसे नष्ट मोहा होकर के आत्मिक भाव रखते हुए उनकी सेवा करना, ये समझ करके ये भी बाबा के बच्चे हैं जिनकी जिम्मेवारी बाबा ने मुझे दी है। तो न्यारे और प्यारे होकर के सेवा करते हैं तो उस समय उनको हमारी भावना स्पर्श होती है और न हमें मेहनत महसूस होगी, थकावट होगी, न उनके व्यर्थ संकल्प के वाइब्रेशन हमारे लिए विघ्न बनेंगे। ये है बेहद की वैराग्य वृत्ति जो बैलेंस रखना सिखाती है। इसीलिए कहा राज ऋषि बैलेंस, ये बैलेंस ही जीवन के अंदर ब्राह्मण जीवन में जितना उन्नति को प्राप्त करना चाहे करा सकता है। अगर ये बैलेंस ही न रहा तो सीधा जमीन पर उन्नति नहीं होगी, प्रगति महसूस नहीं होगी। तो पहला मधुबन निवासी समझना, दूसरा घर से बेघर होकर के अपने आप को उस सिद्धि में रखते हुए रहना, उस स्मृति स्वरूप होकर के रहना, संबंध संपर्क में भी किस तरह से रहना है ये भी बाबा ने हमें सिखाया है। तब हम वो सिद्धि स्वरूप जो कहा धरनी से ऊपर, पानी के ऊपर और आग के ऊपर। चौथी बात कि बेहद की वैराग्य वृत्ति माना अधीनता नहीं अधिकारी। जब अधीनता नहीं अधिकारी तो किस पर अधिकारी, किस पर? स्वभाव, संस्कार, साधन, उसके अधिकारी। कहीं पर भी स्वभाव, संस्कार या साधनों के अधीन हो गए तो भी बेहद के वैराग्य वृत्ति नहीं। तो जब बेहद की वैराग्य वृत्ति में आकर के स्वभाव, संस्कार और साधनों पर अधिकारी बन जाते हैं, अधिकारी होकर के चलाते हैं अपने आप को, दूसरे को चलाने की तो बात ही नहीं है, हर बात में अपने आप को चलाने की बात है, अपने स्वभाव संस्कार को कंट्रोल करने की बात है। तो जब अपने स्वभाव संस्कार को हम कंट्रोल करते हैं तो जो पुराने संस्कार है इसी बेहद की वैराग्य वृत्ति से सदा के लिए मर्ज हो जाएंगे और जो हमारे दैवी संस्कार है वो इमर्ज होना शुरू हो जाएंगे। कई बार ब्राह्मण आत्माएं अपने ही संस्कारों से तंग होती है, महसूस करती है कि मेरी कमजोरी है, उस पर विजयी होना चाहते हैं लेकिन विजयी हो नहीं पाती, इसलिए युद्ध करनी पड़ती है। तो युद्ध वाले योगी बन जाते हैं और बाबा को पसंद है बाबा को पसंद है मोहब्बत वाले योगी, मेहनत वाले योगी नहीं। तो युद्ध जब करते हैं, मेहनत करते हैं अपने संस्कारों को जीतने के लिए, लेकिन बाबा कहे जितना अधिकारीपन होगा, बेहद की वैराग्य वृत्ति होंगी, तो पुराने संस्कार प्रयोग में नहीं आएंगे, इंटरफियर नहीं करेंगे और नेचुरल कर्म योगी बन करके वो पुराने संस्कार मर्ज होकर के दैवी संस्कार इमर्ज होंगे। बहुत सुंदर, गीता को जब मैं पढ़ रही थी, अध्ययन कर रही थी गीता के महावाक्य को, दुनिया की गीता में भी, तो एक अध्याय में बहुत सुंदर बात कही कि जब आत्माएं परम धाम से, माना अव्यक्त से व्यक्त में आती है, और व्यक्त में आकर के उनके जो कहा जाता है कि परमात्मा सृजन करता है सृष्टि, तो उसमें बहुत अच्छी बात एक किसी महात्मा ने लिखी थी कि आत्मा तो अविनाशी है, फिर सृजन किस बात का। जो आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो गीता में कहा विसृजामि, विसृजामि माना मैं पुनः सृजन करता हूं, विसृजामि कहते हैं ना, वो पूरा श्लोक आता है उसका। तो विसृजामि माना क्या, जो आत्मा अजर अमर अविनाशी है उसका सृजन कैसे हो सकता है। तो उसमें बहुत सुंदर बात उसने उसी बात को हाईलाइट करते हुए कहा कि विसृजामि माना जब परमधाम से आत्मा नीचे उतरती है तो उसका सृजन माना उसके दैवी संस्कारों का उदय करता है, उदय होता है, और वो संस्कार इमर्ज होते हैं और पुराने संस्कार उसके मर्ज रूप में चले जाते हैं। इस अर्थ में विसृजामि सृजन होना, यानी वो दैवी संस्कारों के द्वारा दैवी दुनिया का सृजन होता है। तो ये बाबा की बात दुनिया वाले लोग नहीं समझ पाते हैं कि कैसे दैवी संस्कारों का उदय होता है, लेकिन बाबा के ज्ञान से उस बात को इतना सुंदर रीति से समझ में आता है कि जैसे जैसे हम कर्म योगी बनते जाते हैं, बाबा की याद में हर कर्म करते जाते हैं, तो हम अपने पुराने संस्कारों के ऊपर, स्वभाव के ऊपर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, तो उसको प्रयोग होने नहीं देते हैं। अगर हमारा अधिकार नहीं है तो वो बात बात में प्रयोग में आ जाते हैं, और प्रयोग में आते इसीलिए मुश्किलें खड़ी करते हैं, वही पुराने स्वभाव संस्कार हमारे सामने विघ्न खड़ा करता है। तो इसीलिए जब अधिकारी स्वरूप में होंगे, स्वराज्य अधिकारी जिसको बाबा कहा, तो वो स्वराज्य अधिकारी स्थिति से वो पुराने स्वभाव संस्कार प्रयोग नहीं हो सकते, कर्मेंद्रिय से प्रयोग में नहीं आ सकते। तो प्रयोग में जब बहुत काल नहीं आएंगे तो वो संस्कार मर्ज हो जाते हैं, और जितना बाबा के ज्ञान युक्त बातों को हम इमर्ज रखेंगे, अपने कर्म में आएंगे, कर्मेंद्रिय के द्वारा उनको प्रवाहित करेंगे, उस ऊर्जा को प्रवाहित करेंगे, तो वो दैवी संस्कार विसृजामि वो वापस आएंगे, और उसी से हम अपनी दैवी सृष्टि, माना अपनी दैवी सृष्टि क्रिएट करते हैं। जैसे दुनिया में कहावत है कि हर सितारे में एक दुनिया है। अब ये तो हम जानते हैं कि आसमान के सितारों में तो दुनिया नहीं है, लेकिन हर चैतन्य सितारे में तो एक दुनिया है, उसकी अपनी एक कर्म की दुनिया है, हर एक की कर्म की सृष्टि अपनी अपनी है। तो हर एक की जो कर्म की सृष्टि अपनी अपनी है, तो उस कर्म की सृष्टि को मुझे कैसे बनाना है, तो जितना मैं अपने संस्कारों के ऊपर अधिकार प्राप्त करती हूं, तो मेरे कर्मों की सृष्टि कैसी होगी, और वो मेरी कर्म की सृष्टि मेरी दैवी सृष्टि की सृजना करती है। तो मेरा जो भविष्य 21 जन्म के लिए जो मैं अपनी दैवी सृष्टि क्रिएट करती हूं वो कैसी होगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अधिकारी बनना है, कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार के साथ साथ अपने स्वभाव संस्कार के ऊपर भी अधिकारी बनना। और ऐसे जो अधिकारी बनते हैं उसकी दैवी सृष्टि इतनी सुंदर और श्रेष्ठ होगी, क्योंकि संगम युग पर वो आत्माएं स्वराज्य या बेहद की वैराग्य वृत्ति से अधिकारी बने। इतनी सुंदर बातें ये लगती है, महसूस होती है, और बाबा की बातों को लेकर के जब इसके ऊपर हमारा अपना ही एक मनन चिंतन चलता भी है तो भी ऐसा लगता है कि उसी के आधार पर हम अपनी दैवी सृष्टि कितनी सुंदर क्रिएट करते हैं। यथार्थ रूप में कर्म योगी उसी का नाम है। बेहद की वैराग्य वृत्ति ही कर्म योगी बनने का आधार है, और उसी कर्म योगी स्थिति से कर्मातीत तक की अवस्था, विकर्मा जीत की अवस्था प्राप्त करा देती है, क्योंकि अधिकारी बन गए। तो अधिकारी बन गए माना कर्मेंद्रिय जीत, और विकर्मा जीत क्योंकि वो संस्कार इमर्ज होने का मार्जिन नहीं दे रहे हैं। तो बहुत काल से अगर वो संस्कार इमर्ज नहीं हुआ तो क्या हो गया, मर्ज हो जाएगा। इसी तरह से जैसे कहा कि उद्भव होना और समा जाना, दुनिया में कई बार इसीलिए व्यक्ति अपने आप अपने एक दुनिया को उद्भव करता है और पुरानी सृष्टि को समा लेता है, समाप्त कर देता है। तो ये रहस्य है। दुनिया वाले बोलते हैं मतलब नहीं समझते हैं, लेकिन बाबा के ज्ञान से अब इतना क्लियर हो जाता है हमें कि कैसे बेहद की वैराग्य वृत्ति माना पुराने संस्कारों को सदा के लिए मर्ज कर देना, 5000 साल तक वो वापस अपने समय पर ही मर्ज होगा, और दैवी संस्कारों को हम इमर्ज करते हैं, ये बेहद की वैराग्य वृत्ति है। साथ ही साथ उसी दैवी संस्कारों को जब इमर्ज करते, पुराने संस्कारों को समाप्त करते, अधिकार होकर के उसको समाप्त करते, तो संपूर्ण परिवर्तन। इसीलिए बाबा कई मुरली में हम बच्चों को कहते हैं कि बेहद की वैराग्य वृत्ति ही संपूर्ण परिवर्तन का आधार है। संपूर्ण परिवर्तन पूरा, जैसे संपूर्ण अंदर से जिसको कहे इनसाइड आउट, अंदर की वो श्रेष्ठता बाहर आ जाती है और बाहर का जो है वो समाप्त हो जाता है, विलीन हो जाता है, और अंदर की वो श्रेष्ठता बाहर आ जाती है। तो संपूर्ण परिवर्तन का आधार यही बेहद की वैराग्य वृत्ति है। साधन को भी अधिकारी बनकर के यूज करना, बाबा ने कभी हम बच्चों को ये नहीं सिखाया है कि साधनों का त्याग कर देना है, साधनों को विधि बना देना है स्वउन्नति की, साधन को विधि बना देना है स्वउन्नति की और उसी से सिद्धि प्राप्त करनी है। आज जैसे मोबाइल है, साधन है, लेकिन वो साधन को बाबा के बच्चे दुनिया के लोग कैसे उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन हम सभी आत्म उन्नति के लिए उसका प्रयोग करते हैं कि चलो आज जैसे व्हाट्सएप है तो उसके अंदर अच्छे अच्छे ज्ञान की मनन चिंतन की बातें भेजते हैं, एक दूसरे को भी शेयर करते हैं, तो उससे क्या होगा, उन्नति होती। तो हमने उसको स्व उन्नति का साधन बनाया, स्व उन्नति का साधन बनाते हुए उसको यूज कर रहे हैं। चीजों को यूज करने के लिए मना नहीं किया, लेकिन उसमें जो आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, मिसयूज जब करने लगते हैं, या वही हमारा सारा समय खा जाता है और पुरुषार्थ का समय मिलता नहीं है, तो वो विघ्न रूप बन गया। तो उसके लिए बाबा कहे साधन के ऊपर भी अधिकार, साधन के ऊपर भी अधिकार। ये नहीं कि हाँ उसको खत्म कर देना है, यूज ही नहीं करना है, ये बाबा ने नहीं, नहीं तो कैसे पता चले कि हमने विजय पाया है या नहीं पाया है। लेकिन उसके लिए चाहे सारे दिन की दिनचर्या में मैं आधा घंटा फिक्स कर लूं, बस इतना समय ही मुझे उसको चालू करना है और देख लेना है। सारा दिन जो चलता रहे वो हमें डिस्टर्ब करता है ना, उसके वश अधीनता आ गई ना, फिर तो अधीनता नहीं होनी चाहिए, अधिकारी बन करके उसका प्रयोग करें। ये साधन अच्छे हैं, लेकिन साधन अच्छे तब है जब मालिक बन करके उसका प्रयोग करें, उसकी गुलामी को स्वीकार नहीं करें। जहां उसकी गुलामी आ गई वो जीवन के अंदर कष्ट देता है, तकलीफ देता है, दर्द देता है। जहां दर्द महसूस हुआ समझो गुलामी है, वही गुलामी ही तो दर्द देता है ना। अगर मुझे दर्द हुआ उस साधन से तो ये पता चलता है कि ये साधन ने मुझे गुलाम कहीं न कहीं किसी न किसी स्वरूप से जरूर बनाया है। तभी ये दर्द कष्ट तकलीफ महसूस हुई, कोई भी साधन हो, मोबाइल क्या कोई भी साधन हो। आज साधन मालिक बन के प्रयोग करो, प्रयोग किया मालिक बन करके, अधिकारी बन करके, जहां आवश्यकता है जिस तरह से आवश्यकता उसी अनुसार, वो हमें तकलीफ न दे। एक माताजी आए थे यहाँ पर, मेरे को कहा, मेरे को है ना, उसके हाथ में वो स्मार्टफोन था, मेरे को कोई सिखाए व्हाट्सएप कैसे चलाना है। मैंने पूछा उनको, माताजी आपकी एज क्या है, का 72। मैंने कहा अब इस एज में क्या करना है आपको, सीख करके व्हाट्सएप कैसे चलाना, सीख करके क्या करना है। कहा नहीं मुझे सीखना है, उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज आती है ना, पुरुषार्थ के लिए अच्छी अच्छी चीज आती है। मैंने कहा अच्छी बात है ना, अब मेरे पास टाइम तो था नहीं कि मैं उसको कुछ सिखा सकूं, है ना। तो मैंने कहा ठीक है देखूंगी, मेरे पास समय मिलेगा मैं आपको सिखाऊंगी। लेकिन जब नहीं सिखा पाई तो वो फिर समझ गई कि बहन जी सिखाना नहीं चाहती है, वो किसी और के पास जाकर के सीखना चालू किया, फिर अपने आप सीख गई, है ना, सीख गई। सारा दिन वही व्हाट्सएप देखती रहे, उसमें पढ़ती रहे, करती रहे, है ना, इंटरेस्ट भी अच्छा, अच्छी अच्छी चीज आ रही है, कितने अच्छे अच्छे स्लोगन आ रहे हैं, कितना मुरली मिलती है, सब कुछ मिलता है। अच्छी बात है, बिजी हो गए उसमें, अब बिजी हो गए। एक साल के बाद जब मेरे को मिला, मैंने कहा व्हाट्सएप चल रहा है आपका, तो कहा बंद कर दिया। मैंने कहा क्यों बंद कर दिया, अरे बोले मेरा सारा योग ही उसके साथ लग गया। मेरे को कहा मेरा योग ही उसी के साथ, वो जरा घंटी बजे, मैं योग में बैठी हूँ, घंटी बजी तो लगता है क्या आया देखू, मैं क्या आया देखू। तो मैंने कहा ये तो फिर अधीनता हो गई ना, अधीनता हो गई आपके अंदर, तो उस बात को स्वीकार नहीं करना है, चाहिए ही नहीं, बस हो गया ना, समझ लिया क्या है व्हाट्सएप, अब बंद कर दिया। तो मैंने कहा फिर वो अच्छी अच्छी बातें आपकी कहाँ चली गई, वो तो फिर मिलेंगी नहीं। तो कहा नहीं, कम से कम अभी मेरा योग तो लगता है, नहीं तो मेरा योग ही उसी के साथ हो गया था। तो मैंने कहा आपको दिन में समय फिक्स करना चाहिए था कि भाई ये समय से ये समय दोपहर में आधा घंटा मैं देख लूंगी सारे मैसेज और जवाब जिसको देना है दे दो, है ना। तो अधीनता तो नहीं होती थी, कहा नहीं नहीं चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं। मैंने कहा अच्छा एक साल के अंदर समझ में तो आ गया कम से कम कि भाई इसके प्रयोग से मुझे क्या क्या हुआ, मेरे पुरुषार्थ में क्या हुआ। तो इसीलिए साधनों को भी अधिकारी बन के प्रयोग करना अर्थात उसको स्व उन्नति का साधन बनाना, आधार भले बना सकते जिसमें स्व उन्नति हो लेकिन उसकी अधीनता को अगर स्वीकार किया तो कहीं न कहीं दर्द तकलीफ कष्ट महसूस होगा और वो दर्द हुआ माना ही गुलामी है। गुलामी को स्वीकार कर लिया तो गुलामी को स्वीकार न करें, हर जगह उसको चालू रखना ही, मोबाइल को चालू रखना ही जरूरी है ऐसा तो नहीं है। हर जगह जो क्लास कर रहे हैं बट्टी कर रहे तो भी हमें डिस्टर्ब करता रहे वो जरूरी नहीं है ना। जब हम अपनी उन्नति कर रहे हैं तो उस वक्त तो मालिक बन करके उसका मुंह बंद कर दे, है ना। ये तो हमारे हाथ में है कि उसका मुंह कब बंद करना है कब चालू करना है, तो इतना तो अधिकारी अपने ऊपर होना चाहिए। ये है बेहद की वैराग्य के साधन को नहीं यूज करना, ये हमने कोई प्रण नहीं लिया है न बाबा ने हमें ये सिखाया है कि साधनों का त्याग कर दो, नहीं। इसलिए बाबा ने हमें सन्यासी नहीं बनाया है, राज ऋषि बनाया है, है ना, राज ऋषि बनाया है कि प्रयोग भी करो लेकिन अधिकारी बनकर के प्रयोग करो। तो संपूर्ण परिवर्तन का आधार बेहद की वैराग्य वृत्ति है, किस वृत्ति से हम उसका प्रयोग कर रहे हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद बेहद की वैराग्य वृत्ति माना साकार में होते हुए निराकारी स्थिति में जाना, साकारी आकारी निराकारी उसमें आना जाना जब सहज हो जाए सरल हो जाए तो बेहद की वैराग्य वृत्ति कि जब चाहे छोड़ दो आकारी निराकारी दुनिया में चले जाओ, उसमें वहां पर अपनी बुद्धि को ले जाकर के स्थिर करो। जब आना है तो अवतरित होकर के आकर के कर्म करे साकार में, कर्म पूरा हुआ आकारी निराकारी जिस भी स्थिति में, तो ये तीनों स्टेज में जब आना जाना सहज हो जाए बुद्धि का, इतना अभ्यास हो जाए कि सहज रीति से आना और जाना और निराकारी दुनिया के अंदर निराकारी वतन में कितना समय रहना चाहो रह सके। जो कहा ना कि किनारा छोड़ देता है, पैर जब हलवा तैयार होता है तो किनारा छोड़ देता है, तो जब बेहद की वैराग्य वृत्ति वाली स्थिति हमारी बन जाती है तो सहज ही ये चोला हमें नीचे की ओर आकर्षित न करे लेकिन सहज ही छूट करके हम निराकारी दुनिया में आकारी दुनिया में जितना समय रहना चाहे रह सकते हैं। उससे फायदा क्या होगा, निराकारी दुनिया में ज्यादा समय रहने का फायदा क्या होगा कि जितना निराकारी होंगे तो निरहंकारी निर्विकारी सहज बन जाएंगे, तो उपराम वृत्ति और उपराम वृत्ति के साथ साथ साक्षी दृष्टा की वृत्ति हमारी डेवलप होगी। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति माना उपराम वृत्ति और साक्षी वृत्ति, सहज ही साक्षी स्थिति में स्थित हो करके हम आसपास के दृश्य को भी देख सकेंगे, उसमें हम जैसे उस बहाव में खींचे नहीं चले जाएंगे लेकिन साक्षी होकर के उस दृश्य को देखना समझना अपने आप को डिटैच रखना ये सहज हो जाएगा। नहीं तो अगर उस बहाव में अगर चले गए तो वो बहाव में जाने से ही क्या हो जाएगा, दुनिया के दृश्य के बहाव में भी अगर चले गए तो क्या होगा। तो मालिक बनने का या अधिकारी बनने का नहीं होगा। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति माना सहजता से साकारी आकारी निराकारी इस तीनों स्थिति में आना जाना और उसे निरहंकारी निर्विकारी स्थिति या जो बाबा के अंतिम शब्द थे कि निराकारी भव निरहंकारी भव निर्विकारी भव, उस स्थिति को हम सहज अपनी बना सकते हैं। तो इसीलिए कहा कि निराकारी वतन के ओर जैसे सहज एक खिंचाव हो, हमारा बुद्धि का खिंचाव उस दुनिया के ऊपर हो। जैसे कोई भी चीज तैयार होती है तो ऊपर आती है ना, ऊपर की ओर आती। तो इसी तरह हमारी स्थिति भी ऊपर की ओर सहजता से चली जाए तो ये है कि निराकारी दुनिया के तरफ खिंचाव ज्यादा हो, साकार में आओ, कर्म करो, उपराम वृत्ति से कर्म करो, साक्षी भाव हो दृश्य देखते हुए, लेकिन फिर वापस निराकारी दुनिया की ओर अपने घर की ओर, तो घर की स्मृति सहज रहने लगे। ये है बेहद की वैराग्य वृत्ति। अगर घर की स्मृति सारे दिन में नहीं आती है, खाली सुबह अमृत वेले योग के समय याद आई, मुरली के समय याद आई, बाबा के महावाक्य सुना इसीलिए, और बाकी अगर सारा दिन नीचे ही रहे, वो मैग्नेटिज्म नीचे ही हमें पुल करता रहे, वो मैग्नेटिक पुल कम न हो ऊपर की ओर जाने के लिए, तो यहां ही खिंचाव होगा तो बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं है। तो जितना ज्यादा निराकारी दुनिया की ओर हमारा खिंचाव हो तो उतना ही समझो कि बेहद की वैराग्य वृत्ति बनने लगी है, ये पहचान है उसकी, है ना। दूसरी बात, जैसे दुनिया के अंदर कहते हैं कि पहले के समय के ऋषि मुनि ऐसे होते थे, कितने सालों साल गुफा में रहते थे और गुफा में से बाहर निकलते थे तो उनका जो तेज था है ना बहुत अधिक होता था। तो वास्तव में ये भी तो हमारी यादगार है ना, कि जब बाबा ने हमें अंतर्मुक्ता की गुफा दी है तो अंतर्मुक्ता की गुफा में जितना ज्यादा देर हम रह सकते हैं उतना ही सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। जितना बाह्य मुक्ता में आते हैं, इसीलिए बाबा ने हमें स्लोगन दिया था अंतर्मुखी सदा सुखी और बाह्य मुखी सदा दुखी। बाह्य मुखी सदा दुखी, तो जितना अंतर्मुक्ता की गुफा में रह करके हम अभ्यास में रहेंगे तो वो अंतर्मुक्ता की गुफा में जितना ज्यादा देर बहुत काल का अभ्यास होगा तो ये हमें बेहद की वैराग्य वृत्ति क्रिएट करने में बहुत बड़ा मदद या लिफ्ट का काम करेगा, कि सहजता से हमारी बेहद की वैराग्य वृत्ति क्रिएट होगी। अगर घड़ी घड़ी अंतर्मुक्ता के बजाय गए फिर बाहर मुक्ता में आ गए, अंदर जाने का प्रयत्न करते हैं लेकिन बाहर आ जाते हैं, तो बाहर में आएंगे तो व्यर्थ तो चलेगा। जब कोई कोई कहता है कि भाई मुझे व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं तो उसका मतलब बाह्य मुक्ता में ही है, तो अंतर्मुखता का अभ्यास की कमी है। जितना अंतर्मुखी होकर के अभ्यास में रहेंगे, उस गुफा के अंदर रहेंगे तो उस गुफा में रह करके अति इंद्रिय सुख का अनुभव करते जाएंगे, बेहद की वैराग्य वृत्ति उसी का नाम। कि बेहद की वैराग्य वृत्ति माना अंतर्मुखता की गुफा में बहुत समय रह करके जब बाहर आए स्टेज पर बोलने के लिए, मन दुनिया के मंच पर भी आए बोलने के लिए, यानी कर्म व्यवहार में जब बोलने के लिए भी आए तो उस समय हमारे एक एक बोल की वैल्यू बढ़ जाएगी। कि जो आजकल कई बार शिकायत रहती है कि बच्चे सुनते नहीं हैं, परिवार वाले सुनते नहीं हैं, तो क्योंकि शायद हमारी ये तपस्या की कमी है। अंतर्मुखता की गुफा में रहने की जो तपस्या है, उस तपस्या की कमी है। और इस तपस्या की कमी के कारण ही हमारे वचन की कोई वैल्यू नहीं है। कि इतनी अच्छी बात भी अगर हम सुनाते हैं तो लोग उसको अनसुना कर देते हैं, या फिर हंसी उड़ाई जाती है, मजाक बनाया जाता है। तो उसका कारण ये है कि अंतर्मुखता की गुफा में रहने का अभ्यास कम है। तो बहुत काल जो उस गुफा में रह करके फिर बाहर आकर के कुछ एकाध शब्द भी बोलता है, वो अनमोल वचन जिसको सुनने के लिए अनेक लोग तरसते रहेंगे कि ये कुछ कहे, हमें कुछ सुनाए, कुछ बातें बताएं। तो ये है बेहद की वैराग्य वृत्ति का आधार, अंतर्मुखता की गुफा में अपने आप को रखना। बाकी तो जैसे बाबा ने कहा है कि समय अनुसार अगर इस विधि से पुरुषार्थ करके बेहद की वैराग्य वृत्ति बनाएंगे तो अंतिम सीन्स को देखने के लिए समर्थ हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे। अगर बेहद की वैराग्य वृत्ति नहीं है तो अंतिम सीन्स को देखने के समय विचलित हो जाएंगे, हिल जाएंगे। इसीलिए समय को शिक्षक न बना करके समय से पहले अपनी ये स्थिति को तैयार कर लेना। अगर समय से पहले अपने आप को तैयार नहीं किया तो जैसे बाबा कहते हैं कि समय आएगा, वो मजबूर करेगा बेहद की वैराग्य स्थिति में रहने के लिए, लेकिन वो समय की बलिहारी है तो मार्क्स समय को चला जाएगा। इसलिए बहुत काल का ये अभ्यास करने की आवश्यकता है। किसी भी विधि से हमें अपने आप को इस स्थिति में लाने के लिए जैसे पुरुषार्थ करना है, क्योंकि इसी स्थिति से पुरुषार्थ भी तीव्र गति वाला हो जाएगा। जो बाबा कई बार हम बच्चों को कहते हैं, अब समय अनुसार तीव्र गति का पुरुषार्थ चाहिए, तो ये बेहद की वैराग्य वृत्ति ही तीव्र गति पुरुषार्थ को दे देंगी और तब हम सहज उड़ सकेंगे। तो समय को मार्क्स देने के बजाय स्वयं हम ये मार्क्स कमा ले तो उतना अपना भाग्य भविष्य हम श्रेष्ठ बना सकेंगे। तो समय को मार्क्स न जाए, समय से पहले अपनी ये स्थिति को हमें बनानी है। ठीक है, अच्छा। ऑप्शन
ओम शांति। सभी बेहद की वैराग्य वृत्ति के स्वरूप बन गए। दीदी ने हमें ब्राह्मण बच्चों को ज्ञान के साथ योग की जो जोहर भरी है, हम सब इन बातों को सुनते और जानते आए थे, लेकिन दीदी ने जो हमें श्रृंखलाबद्ध राजा भी बना दिया और ऋषि भी बना दिया, हमें स्वराज्य अधिकारी भी बना दिया तो भाग्य का मालिक भी बना दिया। हम सब ने राजा जनक की भांति अपनी आत्मा की ज्योति को सदा जगाए रखने के लिए जो बेहद की उपराम वृत्ति के पुरुषार्थ की विधि दीदी ने दी, उसको हम सब ने स्मृति स्वरूप में लाया और स्वधर्म में स्थित होकर अपने इस अलौकिक जीवन के तीव्र पुरुषार्थ का संकल्प लिया। ऐसी गीता के गीता ज्ञान की विशेषज्ञ हमारी दीदी स्वाध्याय और बाबा को फॉलो करने वाली, बाबा की कॉपी बनने वाली दीदी ने जिन धारणाओं से अपने जीवन को संजोया हुआ है, वो सब धारणाओं के मोती हम योगियों के सन्मुख रखे हैं, अनमोल महावाक्य प्रदान किए हैं। हम सभी ब्रह्मावत्स दीदी को अपने तीव्र पुरुषार्थ के लिए, साक्षी भाव के लिए और बेहद की सुंदर पुरुषार्थ की विधि को अपनाने के संकल्प का शुक्रिया करते हैं। शुक्रिया दीदी। और हम बाबा की आश पर तीव्र पुरुषार्थी बनकर समय को शिक्षक नहीं बल्कि परम शिक्षक को अपना शिक्षक बनाकर जीवन की धारणाओं में सीखकर आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हम दीदी का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं।
यही तमन्ना है ओ बाबा तुम सा बनना है, एक यही तमन्ना है।